आप लोगों के सब्र और हौसले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अरबी गुफ्तगू तक सब्र और हौसले से काम लिया। जहां इफ्तारी का वक्त हो रहा है या खासकर माई मारी बहनें अगर इफ्तारी के अहतमाम के लिए तो वो जा सकती हैं। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेता, सिर्फ एक तज़क्कुर भी है और एक अखलाकी अहम तरीन जरूरत भी है और सिफात में से भी है। जनाब सईदा कायनात फरमाती हैं, या बुनैया ए मेरे बेटे, अलजार सुम्मतदार, पहले हमसाए बाद में अपना घर। जो कि उल्टा है हमारे यहाँ, पहले घर बाद में हमसाए। जहाज में भी कहते हैं पहले अपनी सीट बेल्ट बांध दो फिर जो है दूसरों की बांधना, पहले अपना मास्क लगाओ। वहां पे मुमकिन है कि ये फार्मूला सही हो, जहाज के अंदर जब इमरजेंसी सिचुएशन हो तो वहां पे मुमकिन है, क्योंकि इंसान अगर खुद ऑक्सीजन रखता होगा तो दूसरे को देने की पोजिशन में होगा। वहां पे ये फार्मूला ठीक है, पहले खुद को बाद में दूसरे को। लेकिन आला अखलाक में दीगर जो मसाइल हैं, इज्तिमाई और सोशल उमूर हैं, उसमें सैयदाए कायनात जो आला अखलाकी सिफत बयान करती हैं, कहती हैं पहला हमसाया बाद में अपना घर। कहते हैं ना कि पहले घर में रोशनी होनी चाहिए फिर मस्जिद में चराग जलाओ, है ना, पहले अपने घर को ठीक करो मस्जिद को चराग जलाओ। ये आम फार्मूला है, सही है, गलत नहीं कहते हम इसको, लेकिन हम चाहते हैं कि आइडियल वो बने, आइडियल उसको फॉलो करें, अखलाकियात को ऊंचे तरीन और आला तरीन अखलाकियात में जाएं। तो ये जनाब सईदाए कायनात, या अपने मेरे बेटे, अलजार सुम्मतदार, पहले हमसाया बाद में घर। ये वो घराना है जो खुद भूखे रह के दूसरों का पेट भरते थे। अब आप लोग वाकिफ हैं तमाम चीजों से, मैं इधर क्या वाकयात नकल करूंगा। ये ऐसे घराने हैं जहां पर आपको बिल्कुल चीजें खुद को दूसरों के लिए तकलीफ में डालते हैं। ये ऐसे लोग हैं दूसरों की खातिर खुद को तकलीफ में डालना। ये जो वो सईदा बयान कर रही है ये मुमकिन नहीं है कि आपको कहें कोई ऐसी एग्जाम्पल मिले। हालांकि कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बजाहिर देखें थे कि कोई दुल्हन अपना शादी का जोड़ा उतारे और उस किसी जरूरतमंद खातून के हवाले करे और आम से कपड़े पहनकर चाहे शादी, जिसके लिए एक जवान लड़की और लड़का ऐसी घड़ी के लिए इंतजार करते रहते हैं, हमेशा जो है वो सोचते रहते हैं, ख्वाब देख रहे होते हैं, और अच्छे से अच्छा पहनना और अच्छे से अच्छे बन संवारना चाहते हैं इस घड़ी में। लेकिन एक ऐसी घड़ी में देखें कि शादी के हल्ला गुला और जज्बाती कैफियत और इमोशनल और वगैरह वगैरह सब चीजें अपनी जगह, लेकिन जनाब सैयद आप ऐसी सैयद कायनात हैं, इसीलिए तो फरमाती हैं या बोलिए मेरे बेटे, अलजार सुमतदार, पहले हम साया बात नहीं कर। माह रमजान है, अब इस सैयदा के हम मानने वाले हैं, तो मेरी गुजारिश होगी रोजा रखते हुए, खासकर जो लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अपने हमसायों का ख्याल रखें। सहरी के वक्त खास तौर पे उठते हुए आधी रात को, इफ्तार के वक्त, क्योंकि हम जो खासकर जो साउथ एशियन है, हमारे खाने भी ऐसे हैं कि बाज के लिए हमारे खानों की खुशबू अच्छी लगती है, बाज औकात वही जो हमारे पकवान की खुशबू है वो उन्हें अच्छी नहीं भी लगती। लिहाजा इन हवालों से भी ख्याल रखने को, मैं नहीं कहता कि मत पकाएं मत खाएं, अपनी सकावत और खाने को छोड़ें, नहीं बिल्कुल भी ना करें, ये तो गलत बात होगी, लेकिन इसका एहतमाम करें। टेक्नोलॉजी का दौर है, एग्जॉस्ट वगैरह अच्छे रखें घर के अंदर, एग्जॉस्ट को चलाएं, ऐसे टाइम पे पकाएं कि जिस टाइम पे जो है हमसाए डिस्टर्ब ना हो जाए। इसी तरह जो दूसरा अहम नुकता है वो ये कि रात को उठते वक्त शोर शराबा वगैरह ये चीजें बिल्कुल एहतियात किया जाए, जो खासकर कॉमन बिल्डिंग्स में रहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। जहन में रखें कि ऐसा ना हो कि हमारा दावा होगा मुसलमान होने का लेकिन हमारे काम उसके बरक्स होंगे, बल्कि बाज़ औक़ात जो बेसिक इंसानी फितरत के अंदर जो अखलाकियात होती हैं, जो आदाब होते हैं, वो भी हमें नजर ना आए हमसायों को लेकर। जो है बहुत जरूरी है कि हमसायों के हवाले से इस सिलसिले में ख्याल रखें। पांचवें इमाम का फरमान है कि फरमाया कि देखें हुरमतुल जार अलल जारी का हुरमत उम्मीही। देखें एक माँ की इज्जत व आबरू और ख्याल आप एक बेटा कितना रखता होगा, औलाद कितनी रखती होगी। हर औलाद अपनी माँ के बारे में कम से कम एक सेंसिटिव होते हैं, अगर बुरे तरीन भी हों। कह रहे हैं कि जिस तरह तुम्हारा हमारे नजदीक हमारी वालिदैन और हमारी माँ की इज्जत है, आबरू है, उसके हवाले से हम हमेशा एक सेंसिटिव पहलू रखते हैं और हमेशा एहतमाम करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। कह रहे हैं इसी तरह का ख्याल जो है आप अपने हमसाये के बारे में, जिस हरमत और जिस इज्जत और आबरू का ख्याल अपनी वालिदा के लिए रखते हो, उसी तरह का ख्याल अपने हमसाये के लिए रखो। मैं अपनी वालिदा के ऐब तो लोगों को नहीं बताता फिरता, मेरी वालिदा की खामियां और गलतियां तो कभी भी नहीं बताता। औलाद जो होती है साले वो तो कभी नहीं बताती, मगर यह कि वो बिल्कुल ट्रैक से ही बाहर हो चुके हों। अपनी माँ की बल्कि चीजें मनफी भी होती हैं, क्योंकि होता है इंसान है तो पर्दा डालते हैं उसके ऊपर। तो कह रहे अपने हमसायों के बारे में भी ये रवैया रखो, जिस तरह अपनी माँ के ऐबों पर पर्दा डालते हो हमसायों के ऐब पर, जिस तरह अपनी माँ के आराम का ख्याल रखते हो हमसायों के आराम का ख्याल रखो, जिस तरह अपनी माँ के लिए इम्पोर्टेंस और इज्जत और आबरू का अपने हमसाये के लिए भी ख्याल रखो। बाज़ रिवायात में है कि एक शख्स आया अपने हमसाये की शिकायत की, तो हजरत नाराज हुए उनके ऊपर, कहा कि तुम ये शिकायत जो है अलग से क्यों नहीं, क्यों मलए आम में सबके सामने क्यों अपने हमसाये की आबरू रेजी की, इज्जत को उछाला, हमारी जो सलीस उर्दू में इज्जत उछाला तुमने, कि ये गलत तरीका है। लिहाजा माह रमजान है, हमें रोजा रखने का मतलब ये नहीं है कि हमें एक फ्री हैंड मिला है कि हम आधी रात को उठे हमसायों को तंग करें, दिन के वक्त हमसायों को तंग करें। आप देखें मेरे उस मैं चले मैं मिसाल करके देता हूँ, यानी कि मैंने कोई कमाल किया है, ये फरीजा फराइज तो बुनियादी चीजें हैं, इसमें कोई कमाल की बात है नहीं। उस तरफ कमरा है, वहाँ काफी बड़ा डाइनिंग जो कमरा है या जो भी आप हाल है, मैं वहां पे ये कर सकता हूँ प्रोग्राम, लेकिन क्योंकि मुझे पता है उसके नीचे बिल्कुल ही एक हमारी बुजुर्ग उम्र खातून रहती है, जो काफी बुजुर्ग उम्र भी है, वो थोड़ी सी बीमार भी है और आजकल ज्यादा, मैं उस कमरे में सिर्फ इसलिए नहीं जाता, हालांकि वहां ज्यादा इजी है मेरे लिए लाइटिंग के हवाले से भी और दीगर हवालों से भी। मैं डे वन से वहां नहीं जा रहा, बल्कि अपने जो बेडरूम है या जो मेरा अपना रूम है उसके अंदर बैठ के कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उस खातून की वजह से कि मेरी आवाज वहां ना जाए, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, तंग ना हो जाए। बहरहाल ये जरूरी है हम सब में से, ये कोई कमाल नहीं है ये जो किया है, ये नॉर्मल सी चीजें और इंतहाई बेसिक चीजें हैं। दूसरा जो नुकता है वो ये है कि देखिये माह रमजान है, ये माह रमजान को कहा कुरान मजीद की बहार का मौसम, ये मौसम 30 दिन रहेगा, बहार का जो मौसम है ये 30 दिन रहेगा रमजान का। इस 30 दिन में कुरान मजीद से भरपूर इस्तेफादा करें, ठीक है, तफसीर चल रहा है, खुद से भी कुरान मजीद को देखें, आदमी खुद भी गौर व फिक्र करे तो बहुत सी चीजें समझ में आती, तिलावत करे, तिलावत नहीं कर सकता तिलावत पढ़े, तिलावत सुने, तिलावत सुनी जा सकती है, रोजाना कम से कम एक हिस्सा तो कुरान मजीद का सुन ले, कुरान को सामने रखकर रोमन अरबी में पढ़ी जा सकती है, जितना कम से छोड़ तो ना दें हर कुछ। पांच इमाम ने फरमाया लिकुल्ली शैइन रबीउन व रबीउल कुरान शहरु रमजान, फरमाया हर चीज का एक मौसम होता है ना, मौसम बहार का मौसम होता है, कह रहे कि कुरान का जो बहार का मौसम है ये रमजान है। और मौलाए कायनात फरमाते हैं कि देखो तफक्कहू फीही, कुरान मजीद में गौर व फिक्र करो, यानी इसके साथ अपनी अटैचमेंट रखो, क्यों, फइन्नहू रबीउल कुलूब, ये कुरान मजीद दिलों की बहार। तो हम क्या हैं, कुरान के बहार के मौसम में हैं और कुरान मजीद हमारे दिलों के लिए बहार है, लिहाजा तिलावत से दूर ना हटें। बच्चे जो खासकर घरों में हैं उनको तिलावत करना चाहिए, जो सूरे आते हैं वो तो नमाज में पढ़ने वाले सूरे तो हमें आते हैं, तो रोजाना एहतमाम करे आदमी इफ्तारी के दस्तरखान में बैठते हुए वही सूरे जो उसको जबानी याद है उन्हीं को रिपीटेड पढ़ ले। कुरान नहीं है क्या सूरा जो है, कुरान का सूरा कुरान नहीं कहलाएगा, नऊज़ु बिल्लाह, ये तो नहीं होता, वही सूरे रिपीट करे, सूरे अलहम तो हर किसी को आती है, नमाज पढ़ते हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं मन आ न सभी तिलावतिल कुरान लम तो हिशहु मुफारकतल इख्वान, जो शख्स कुरान मजीद की तिलावत से मानूस हो गया, मानूस यानी दोस्ती हो गई, मानूस यानी वाकिफियत हो जाना, दोस्ती हो जाने, अब मैं उसकी हर चीज समझता हूँ, यानी अब वो मेरे लिए अजनबियत नहीं है, मेरे लिए उसके मेरे और उनके दरमियान अब जो है ना वो स्ट्रेंज नहीं रहा, अजनबी नहीं है, फ्रेंकनेस हो गई हमारे दरमियान। मानूस का मतलब यह है आनसा, उनसियत कहते हैं जो साथ दो अजनबी आदमी साथ गुजारे एक टाइम में, आखिर में उनके दरमियान एक तरह की एक लगाव और एक तरह की अटैचमेंट और एक तरह की आशनाई और वाकिफियत भी हो जाते हैं, आस्ता आस्ता एक दूसरे को पहचान लेते हैं, इसको ये पसंद है ये पसंद नहीं है, ये इस वक्त ये खाना पसंद करता है, ये कलर इसका ये है, वगैरह वगैरह बहुत सी जो हमारी जिंदगी में, कह रहे कि जो जो है कुरान की तिलावत के करीब नजदीक हो गया, कह रहे उसे फिर दोस्तों की जुदाई से वहशत नहीं होगी। और चौथे इमाम फरमाते हैं लव, मैंने पहले भी एक दफा यह हदीस अर्ज किया, लव मा तबैन अल मशरिक वल मगरिब, कहा कि अगर मशरिक और मगरिब के सारे लोग मर जाएं, मतलब पूरी दुनिया में कोई इंसान बाकी ना बचे, सब मर जाएं, लमस्तौहशतु, मैं वहशत ज़दा नहीं होऊंगा, मैं वहशत का एहसास नहीं करूंगा, क्यों, शर्त यह कि बाद अन यकून अल कुरान माई, اگر قرآن مجید میرے ساتھ ہے تو میں بالکل تنہائی کا احساس نہیں کروں، بالکل وحشت کا احساس نہیں. یہ جو اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بعض لوگ مجھے ماشاءاللہ سے ای میلز پہ اور واٹس ایپ کے ذریعے سے اتنی چیزیں بھیجتے ہیں، ڈاکیومنٹریز بھیجتے ہیں، آغا صاحب یہ ڈاکیومنٹری دیکھیں، ایبولا وائرس جو ہے افریقہ میں آیا، سارس آیا تھا تو افریقہ میں اس طرح انہوں نے لاک ڈاؤنز کیے، کیسے اقدامات کیے تھے، اس کے اوپر ڈاکیومنٹری ہے. بعض موویز بھی بھیجتے ہیں، ڈرامے بھی بھیجتے ہیں. میرے پاس ابھی فی الحال تو ٹائم نہیں کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں، لیکن میں نے کچھ جو ہے، میں نام نہیں لوں گا یہاں پر، لیکن کچھ چیزیں میں نے ایسے ہی سرسری دیکھی ہیں. اور انسان ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فرضی طور پر ایسے فلمیں بنائی جاتی ہیں یا ایسے ڈرامے بنائے جاتے ہیں کہ دنیا میں سارے لوگ مر گئے ہیں، یا ایک بندہ اکیلا جزیرے میں پھنسا ہوا ہے، یا واقعاً دنیا میں جو ہے کسی وبا کی وجہ سے سارے لوگ ختم ہو چکے ہیں، کسی وائرس کی وجہ سے چند ایک لوگ رہ چکے ہیں، اور وہ تنہائی کے مارے وحشت زدہ ہو جاتے ہیں، اور مفاد یعنی ان کی جو کیفیت ہوتی، انسان کا تصور کر سکتا ہے اس کس طرح کی چیزوں سے. قانون بنانے والوں کے اپنے اہداف ہوں گے، انٹرٹینمنٹ ہو یا پیسہ ہو یا کوئی اور کسی سوچ کو پروموٹ کرنا ہو، وہ اپنی جگہ. لیکن جب ہم انسان دیکھتے ہیں تو پھر ان یہ جو احادیث ہیں اس کی تھوڑی بہت انسان لمس کرتا ہے، محسوس کر لیتا ہے. چوتھے امام فرمایا، لو ما تبین المشرق والمغرب لمستوحشت بعد ان یکون قرآن. اور رسول آخری بات جو ہے، رسول گرامی اسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا جس کا کچھ حصہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، اسی خطبے کے اندر یعنی جو استقبال رمضان کا خطبہ تھا، اسی خطبے کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا، ومن تلاہ فی ومن تلاہ آیتا من القرآن کان لہ مثل آجر من ختم القرآن فی غیری من الشہور. یعنی کہ اگر اس ماہ رمضان میں جو کہ بہار قرآن ہے، ایک آیت بھی، من تلا فیہ آیتا، دیکھو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول سے ہی تو ہم لیتے ہیں دین، اور اعلی رسول سے لیتے ہیں، اور کس سے لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھی آیت پڑھتا ہے، ایک آیت، اب بسم اللہ بھی ایک آیت ہی تو ہے، اعوذ باللہ بھی تو آیت ہی ہے، بسم اللہ بھی آیت ہے، الحمدللہ پورا سورہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آیت بھی اگر پڑھتا ہے تو ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں پورا ایک قرآن مجید ختم کیا ہو. اب بہت ساروں کو تو ٹھیک ہے دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا ہو، لیکن کم سے کم اللہ کے بندے زبانی سورے تو ہمیں یاد ہیں، وہیں الحم ہمیں یاد ہے، الحم کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں. بیٹھے آرام سے کہیں کہ بھائی میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ماہ رمضان ہے، بہار ہے، قرآن میرے دلوں کی بہار ہے، اور رمضان قرآن کا بہار ہے، بہاریں ہی بہاریں ہیں، برکتیں. میں بیٹھتا ہوں تلاوت کر رہا ہوں جی، ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وہی سورہ قل هو الله احد، سورہ قل اعوذ برب الناس. اکثر لوگوں کو کیونکہ آیت الکرسی کے کچھ اور بھی وہ ہیں، تاثیر ہیں، تو وہ یاد ہوتی ہے، چار قل یاد ہوتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنا آتا ہے، کم سے کم انسان یہ تو کر سکتا ہے. فرمایا ایک آیت، یہ نہیں فرمایا بسم اللہ، بسم اللہ آیت ہے اور کیا ہے، اعوذ باللہ آیت ہے اور کیا ہے، ایک آیت کی بات کی ہے، یہ کوئی ایسے وہ نہیں ہے، یعنی یہ مذاق کی بات نہیں ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے رسول مذاق تو نہیں کرتے، مبالغہ بھی نہیں کرتے ہمارے ساتھ، یہ اللہ کا رسول ہے. کل کو آپ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں، ہم میں سے ہم جا کے دعویٰ کریں گے، کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے خطبہ رمضانیہ استقبال رمضان آخر شعبان میں نہیں فرمایا من تلا فیہ آیتا من القرآن، ایک آیت میں نے تو پڑھی تھی، دو آیتیں، مجھے دو قرآن ختم کرنے کا ثواب ملنا چاہیے، 20 پڑھی تھی تو 20 قرآن، 100 پڑھی تھی تو 100 قرآن. دعویٰ بھی تو کر سکتے ہیں روز محشر اور روز جزا و حساب و کتاب میں. تو بالآخرہ جو ہے یہ دو عرائض تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے ہمسایوں کے حوالے سے. مہربانی کریں، سب خیال رکھیں، لوگوں کو یہ احساس ہو، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ دیکھو بھائی مسلمانوں کا رمضان آیا، اب ہماری راتیں تھوڑی ڈسٹرب ہوں گی، برداشت کرنا ہے، ان کا رمضان ہے. یہ اب پتہ نہیں عجیب و غریب پکوانوں کے ذریعے سے ہمیں ڈسٹرب کریں گے، بے ٹیم پکائیں گے، یہ کریں گے، شور کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بلکہ یوں دکھانا چاہیے، یار مسلمانوں کا قرآن رمضان آیا ہے، ابھی یہ پہلے سے زیادہ سافٹنیس ان میں ہے، پہلے سے زیادہ پیار و محبت آ گیا ہے ان کے اندر، پہلے سے زیادہ جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے ہمارے ساتھ، پیار سے بات کریں گے، ہمارا بہت زیادہ آپ یہ خیال رکھنے والے ہیں. پہلے اگر شور ہوتا بھی تھا تو اب تو بالکل بھی نہیں ہوگا، ان کا رمضان آیا ہے. یہ اصل میں ہونا چاہیے، نہ کہ کہتے ہیں بعض اوقات ایک لطیفہ ہے، بہر اس لطیفے سے اختتام کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کو کمرے میں الگ سے سیپریٹلی بلا کے اکٹھے کر کے کہہ رہی تھی بیٹا جو ہے نا آپ شرارت نہیں کرنا, رمضان شروع ہو چکا ہے, آپ کے ابا جو ہے نا پہلے سے زیادہ غصے میں ہوں گے, تو پھر وہ جو غصے میں ساری لمٹ کراس کریں گے. تو بچوں سنو, آپ شرارتیں بند کر دو کیونکہ رمضان آیا ہے. ان کے رمضان کے احترام میں نہیں, باپ رمضان میں غصے میں زیادہ آ جاتے ہیں. اور بعض گھروں میں, اگرچہ آج کل تو ایسا نہیں ہے لیکن الحمدللہ پھر بھی تذکر ہے, تو بعض گھروں میں خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. بعض فیملیز کے اندر خواتین بیچارے افطاری کی تیاری بھی کرنی ہے, سحری بھی بنانا ہے وغیرہ وغیرہ, اور پھر افطاری میں کچھ چھوٹی سی بات ہو تو مرد حضرات اونچ نیچ بھی کرتے ہیں. مرد حضرات کو چاہیے, اولاد ہیں, بھائی ہیں, بیٹے ہیں, جو بھی ہیں, وہ چاہیں کہ اپنی بیگمات کے, اپنی بہنوں کے, اپنی بیٹیوں کی جو ہے ہاتھ بٹائیں کچن میں, مدد کریں, تعاون کریں ان کے ساتھ اور مل جل کر افطاری کا اہتمام کریں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, کافی وقت لیا. مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور جلد اس وبا کے سے ہم سب چھٹکارا پائیں انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. فی امان اللہ. آپ مولا آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے.
جزاک اللہ قبلہ, اللہ حافظ.
جزاک اللہ.